लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि राष्ट्रों के नेता, अनेकानेक निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाने वाले हथियारों के व्यापार को समाप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की। तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए। तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। तेरा रोष शांत हो गया, तेरी क्रोध अग्नि बुझ गई। हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 85वें भजन के प्रथम पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। स्तोत्र ग्रंथ के 84वें भजन में हमने प्रभु ईश्वर की क्षमा और इसे नव वर्ष के महापर्व की आशीष रूप में ग्रहण करने की क्रिया को संपादित होते देखा, जबकि 85वें भजन में हम ईश्वर के रचनात्मक प्रेम से परिचित होते हैं। ईश्वर ने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाकर इज़राइल के पुनर्वास को मूर्त रूप प्रदान किया था। प्रभु ने अपने लोगों को आश्वस्त किया, उन्हें सांत्वना प्रदान की, उन्हें निर्वासन से घर वापस बुलाया। इतना ही नहीं, अपनी प्रजा के प्रति ईश्वर का क्रोध समाप्त हो गया था। वस्तुतः स्तोत्र ग्रंथ का 85वां भजन शांति और न्याय की बहाली के लिए एक प्रार्थना है। इस भजन में प्रार्थी प्रभु ईश्वर के अनुपम और दयालु कार्यों की याद करता तथा उनसे अपनी मुक्ति की आर्त याचना करता है। श्रोताओं, इस बात का हम सिंहावलोकन कर चुके हैं कि 85वें भजन को कोराह के पुत्रों का गीत भी कहा गया है, जो इब्रानी बाइबल के अनुसार मूसा और हारून के रिश्तेदार थे। इस भजन के प्रथम पद हमें बाबुल से सियों तक की लंबी तीर्थ यात्रा का स्मरण दिलाते हैं, जो इसराइल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। और अपनी इस लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा के दौरान कई बार ईश भक्तों को यह महसूस हुआ कि उनकी कठिनाइयों और उनके संकट का प्रमुख कारण प्रभु ईश्वर का कोप था। इसी वजह से वे प्रार्थना में आगे के पदों में कहते हैं, क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौटकर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझमें आनंद मनाए? श्रोताओ, इस स्थल पर हमने आपको इज़रा के ग्रंथ में निहित फारस के राजा द्वारा ईसा पूर्व 538वें वर्ष में इसराइलियों के वापस घर लौटने की राज आज्ञा के बारे में बताया था। उसने समस्त निर्वासित यहूदियों को अपने घर यूदा लौटने की अनुमति प्रदान कर दी थी और इस वापसी यात्रा में लोगों को अनेकानेक कष्ट भोगने पड़े थे। इसी के संदर्भ में 85वें भजन के प्रार्थी असमंजस में पड़े हैं कि प्रभु का क्रोध उन पर अब तक क्यों बरकरार था। वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके पास पुनः लौटें और उन्हें नव जीवन प्रदान करें, जिससे ईश प्रजा प्रभु में आनंद मना सके, क्योंकि प्रभु ईश्वर की रक्षा और उनकी सहायता के बिना वे जीवन की तीर्थ यात्रा में कभी भी सफल नहीं हो सकते थे। आगे 85वें भजन के 8वें और 9वें पदों में भी तीर्थयात्री अपनी प्रार्थना को जारी रखते हुए कहते हैं, प्रभु हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूँ। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप न करें। इन पदों में मानो तीर्थयात्रियों का उपदेशक उनसे कहता है कि वे अपना मुंह बंद रखें और मौन रहकर ईश्वर की बातें सुनें। ईश्वर की दया दृष्टि से ही मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं जो ईश्वर कहता है। कहता है कि ईश्वर की आवाज सुनना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों को शांति का संदेश देते हैं तथा उन्हें फिर कभी पाप में न पड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मानो उपदेशक तीर्थयात्रियों से कहता है कि तुम ईश राज्य की कल्पना किसी ऐसे राज्य से करते हो जिसमें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु ईश्वर का राज्य तो शांति का राज्य है। वह मानव जीवन की अखंडता, ठोस पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता तथा एकात्मता का राज्य है। वह ऐसा राज्य है जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद को तत्पर रहा करते हैं तथा अन्यों के सुख में अपना सुख मानते हैं। ईश्वर की शांति और उनके प्रेम से प्रेरित होकर ही मनुष्य पाप न करने की शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए ईश्वर की आवाज सुनने के लिए भक्त अपने मन के कानों को, अपने मन के द्वारों को सदैव खुला रखें। श्रोताओं, 85वें भजन में वस्तुतः भजनकार लोगों को स्मरण दिलाता है कि उन्होंने अब तक तो केवल अपने शारीरिक दुखों और कष्टों की चिंता की थी तथा इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, किंतु अब समय आ गया था जब उन्हें अपने आध्यात्मिक सुख के बारे में सोचना था। इसराइलियों ने अब तक जेरूशलेम के खंडहरों और टूटे हुए मंदिर को देखा था, किंतु अब समय आ गया था जब वे अपने खंडहरों और अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करें, उसका पुनर्निर्माण करें। श्रोताओं, इस संदर्भ में हगई के ग्रंथ के 1 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, विश्व मंडल का प्रभु कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। और फिर 9वें पद में विश्व मंडल का प्रभु कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, जबकि तुम सब अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। आगे भी 13वें पद में लिखा है कि नबी हगै ने लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया और यह कहते हुए कि प्रभु सदैव उनके साथ हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया और प्रेरित किया कि वे ईश्वर का संदेश सुने तथा शांति का राज स्थापित करें। 14वें पद में हम पढ़ते हैं कि नबी हगै के मुख से ईश्वर का संदेश सुन लेने के बाद वे उपस्थित हुए और उन्होंने विश्व मंडल के प्रभु के मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ किया। श्रोताओं, कहने का तात्पर्य यह कि हम चाहे किसी भी काम को करें, उस काम के केवल आर्थिक पक्ष को ही ध्यान में न रखें, बल्कि अपने अंतर मन से ध्यान लगाकर ईश्वर की आवाज सुने तथा उसी के अनुकूल अपना जीवन यापन करें। Thank you.
हम सब विजय मना।